नमस्कार भारत, आज है 31 मई दिन बुधवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं अयोध्या। बाबरी विध्वंस मामले में दिग्गज बीजेपी नेताओं समेत 12 लोगों पर आरोप तय होने के अगले ही दिन।
जेल होता है तो जेल जाने को लेते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है।
यूरोप दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्पेन। रिपोर्ट होगी सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हुए टकराव की।
हिंदू काटते हैं चमार समझ गए और मुसलमान काटते हैं हिंदू समझ गए, तो हम तो कटते कटते हैं।
और कश्मीर पर खास श्रृंखला के तहत व्यथा, पाकिस्तानी कश्मीर से भारत आई एक महिला की।
अपने पति के पीछे हम आ गए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, अपना मुल्क छोड़ दिया, हम लोग यहाँ आके बिल्कुल फंस गए।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। योगी अयोध्या में करीब 9 घंटे तक रहेंगे और वहां रामलला के दर्शन करने के अलावा पार्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी करेंगे। इसके अलावा वो महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले मुकदमे के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी योगी ने मुलाकात की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया है कि 2 साल के गृह युद्ध के बाद यमन पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत पतन की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख स्टीफन ओब्रायन ने कहा कि देश के लोगों को अभाव, बीमारी और मौत से जूझते हुए दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा, तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो संकट और बढ़ जाएगा। स्टीफन ओब्रायन ने कहा,
The Yemeni people face a triple threat of armed conflict, famine and deadly disease that has already killed.
समय निकल रहा है। यमन के लोग 3 खतरों का सामना कर रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष, अकाल और जानलेवा बीमारियां, जिनके चलते लाखों लोग या तो मारे जा चुके हैं, घायल हुए हैं या फिर विस्थापित हो चुके हैं। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। कड़वी सच्चाई ये है कि ये खतरे मानव निर्मित हैं और इनसे आसानी से बचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इन संघर्ष कर रहे पक्षों से मेलजोल रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो तत्काल इन खतरों से उन्हें अवगत कराएं और यमन और वहां के लोगों को आपदा की कगार से वापस लाएं। ये थे स्टीफन ओब्रायन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमर गैब्रियल ने कहा है कि जर्मनी और अमेरिका दोनों देशों के नेताओं के बयानों ने उनकी असहमति को महत्वहीन बना दिया है। उन्होंने एंगेला मार्केल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं की टिप्पणी को लेकर कहा कि बियर टेंट और ट्विटर के जरिए संवाद करना अनुचित है। इसी सप्ताहांत में जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने बेवेरियन बियर फेस्टिवल में कहा था कि यूरोप के को दूसरों पर निर्भर रहने के दिन अब चले गए हैं। ये बात उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो में जर्मनी के व्यापार सरप्लस और नाटो के लिए अपर्याप्त योगदान के बारे में शिकायतों के बाद कही थी। वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जर्मनी अभी भी अमेरिका के लिए अहम सहयोगी है। शॉन स्पाइसर ने कहा,
I think the relationship that the president has had with Merkel, he would describe as fairly unbelievable. They get along very well.
मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप और एंगेला मार्केल के बीच मुलाकात अप्रत्याशित थी। ट्रंप एंगेला का बहुत सम्मान करते हैं। वो G7 वार्ता के दौरान बने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। वो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि बाकी यूरोप को भी अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के तौर पर देखते हैं। नाटो और G7 में वार्ता के दौरान राष्ट्रपति ने हमारे ट्रांस अटलांटिक रिश्ते को बेहतर बनाने की आवश्यकता को फिर से दोहराया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत वकील माइकल कोहन को रूस और ट्रंप के चुनाव अभियान टीम के बीच संबंधों के आरोपों की जांच के लिए कांग्रेस पैनल के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी का कहना है कि पैनल का यह फैसला तब आया है जब माइकल कोहन ने अमरीकी मीडिया से कहा कि उन्होंने क्रेमलिन के साथ संपर्क के बारे में जानकारी और बयान देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि यह अनुरोध खराब तरीके से पेश किया गया था। ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि उनके अभियान टीम की रूस से कोई सांठगांठ थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि दुनिया बेतरतीब हो रही है और अगर किसी देश को 2015 के जलवायु समझौते की जरूरत पर संदेह है तो ये बाकी देशों पर होगा कि वो इसे लेकर कार्यवाही को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज अयोध्या फैजाबाद के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा है। वहां उनका राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी जाने का भी कार्यक्रम है, जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
2 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ऐसा माना जा रहा था और लगभग तय भी हो गया था कि आदित्यनाथ योगी अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उस वक्त वो कार्यक्रम बदल गया और उसे आज अंजाम दिया जा रहा है। योगी अयोध्या में करीब 9 घंटे तक रहेंगे और वहां रामलला के दर्शन करने के अलावा पार्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी करेंगे। इसके अलावा वो महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले मुकदमे के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी योगी ने मुलाकात की थी। मुकदमे की सुनवाई की तारीख पहले से तय थी, लेकिन योगी का कार्यक्रम बाद में तय हुआ है। इसके पीछे कोई वजह है या फिर महज संयोग, बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र।
आज की तारीख में सारे नेता कोर्ट में पेश हुए और एक दिन बाद अयोध्या मुख्यमंत्री जा रहे हैं। यानी अयोध्या इशू को भारतीय जनता पार्टी कुछ दूसरे ढंग से जीवित रखना चाहती है, जीवंत बनाए रखना चाहती है, सिर्फ उसका कलेवर चेंज करना चाहती है। उस कलेवर में नहीं रखना चाहती जिस कलेवर में सिर्फ मंदिर ही उसके एजेंडे में हो।
मंगलवार को लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेशी पर आए पूर्व सांसद रामविलास वेदांती की बातों से भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा किसी खास उद्देश्य से हो रही है।
यदि आजीवन कारावास होता है, जेल होता है, तो जेल जाने को लेते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या जा रहे योगी आदित्यनाथ के इस प्रस्तावित कार्यक्रम के राजनीतिक नेतार्थ भी निकाले जा रहे हैं। करीब 1.5 दशक बाद राज्य का कोई मौजूदा मुख्यमंत्री अयोध्या की यात्रा कर रहा है। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही उपचुनाव भी लड़ सकते हैं। यूं तो योगी ने अयोध्या के लिए अपनी यात्रा से पहले ही विकास और पर्यटन से संबंधित कई घोषणाएं कर रखी हैं और इस यात्रा के दौरान भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें राम मंदिर के निर्माण को लेकर हैं, क्योंकि चुनाव से पहले खुद योगी इस मुद्दे पर काफी मुकर रहे हैं। लेकिन योगेश मिश्र को मंदिर निर्माण से संबंधित किसी घोषणा की उम्मीद नहीं दिखती है।
मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब भी कोई आदमी सत्ता में आ जाता है तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो जिन बातों को कहती थी, जिनका विरोध करती थी, आज उनके पक्ष में खड़ी है। तो ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि सत्ता और विपक्ष की भाषा अलग अलग हो जाती है।
यूं तो मंदिरों के दर्शन के अलावा योगी के कार्यक्रम में मंडलीय समीक्षा भी शामिल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि निगाहें तो सिर्फ राम मंदिर पर उनके किसी वक्तव्य या घोषणा पर ही होंगी। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जिन 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं उनमें विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया भी शामिल हैं। इस मामले के अन्य अभियुक्तों की ही तरह कोर्ट ने डालमिया की जमानत भी मंजूर कर ली है। डालमिया से हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की।
ये तो बिल्कुल गलत बात है। कॉन्स्पिरेसी को मतलब हम लोगों ने तो बल्कि रोकने की कोशिश की। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सब ने रोकने की कोशिश की। भीड़ इतने उत्तेजित हो गई थी कि वो किसी के सुनने वाले नहीं थे उस समय, क्योंकि कारण क्या कि बार बार हम लोग उनको बुलाते थे कर्तव्य के लिए और वो बार बार आके हताश चले जाते, भाई खाली सिम्बॉलिक होता है, काम तो कुछ होता नहीं। तो वो सिर्फ जरा सा नारा, एक तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे लोग। अब तो उन्होंने नाराज आ गया, हम करके रहेंगे इस बार तो सच्ची सेवा करके रहेंगे। ये करके हमने रोकने की कोशिश की, सफल नहीं हुए, लेकिन अभी इसको कहते हैं षड्यंत्र था, ये बिल्कुल गलत बात है।
आज कोर्ट में भी आप लोगों ने ये दलील दी और आपने ये कहा कि ये जो आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं हैं ये न लगाई जाएं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ साक्ष्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए ये जज ये तो कह नहीं सकता कि धारा नहीं लगाएंगे, हमको तो लगानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि हम लोगों से पूछा गया कि भाई आप लोग इसको स्वीकार करते हो कि नहीं, गिल्टी हो कि नहीं। हम लोगों ने कहा गिल्टी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। तो अब उसमें खाली उन्होंने चार्जशीट लगा दी और बेल बॉन्ड लेके सबको छोड़ दिया। यही फॉर्मेलिटी, कागजी कार्रवाई पूरी हुई आज, तो आगे बहस होगी, विजिलेंस होंगे, बहस होगी, आगे होगा।
लेकिन जब 25 साल के बाद ये मामला दोबारा आ रहा है तो क्या इसमें आपको कोई राजनीति दिखती है?
देखिए जी 25 साल तो बहुत बड़े होते हैं, हमारे यहाँ मुश्किल है, इंडिया में जुडिशियल सिस्टम जो है वो इतना लंबा खींच जाता है, 25-25 साल क्या 50-50 साल में भी होते हैं, बाप ने पैदा किया है तो वो ग्रैंड सन के टाइम पे जाएगा। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में तो बहुत डिलेज हैं और डिले के कारण तो जस्टिस डिनाइड है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
पूरा जो आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये राजनीतिक आंदोलन था ही
नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद आंदोलन था, भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही थी, वो अलग बात है कि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था।
विश्व हिंदू परिषद के लिए आज की तारीख में ये आंदोलन किस जगह खड़ा हुआ है?
विश्व हिंदू परिषद के लिए तो ये बात थी कि समझौता जब हो चुका है तब आंदोलन की जरूरत क्या है।
ये थे विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पशु बिक्री और व्यापार के लिए जारी आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस बीच आईआईटी मद्रास के एक छात्र को कथित तौर पर बीफ फेस्टिवल कराने के लिए बुरी तरह पीटा गया है। पूरे ब्यौरे के साथ इमरान कुरैशी।
पिछले थोड़े दिनों से देश में केंद्र सरकार का लाया गया पशु व्यापार और पशु बेत के रोक पर अधिसूचना बहुत चर्चा में रही है। इतना तो स्पष्ट होने लगा था कि किसी न किसी दिन कोई वकील हाईकोर्ट जाएगा और उस अधिसूचना पर रोक लाएगा। बहरहाल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने उस अधिसूचना पर रोक लगा दिया और केंद्र सरकार को 4 हफ्तों तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने की मोहलत भी दिया है। कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता एल सिल्वागोमती की याचिका पर रोक लगाया। सिल्वागोमती के वरिष्ठ वकील अजमल खान ने बीबीसी को बताया,
इसलिए रूल्स फ्रेम्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट इज अल्ट्रा वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर प्ली हियर। द ग्राउंड्स विच डिफाइंड द रिपोजिशन इज नंबर 1, रूल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960।
पहले तो जो नियम इस अधिसूचना में लाए गए हैं वो संविधान के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार इन नए नियमों से राज्य सरकारों का हक ले लिया है। ये थे अजमल खान के शब्द। सिल्वागोमती की याचिका दरअसल वही बात कह रही है जो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी चिट्ठी में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि केंद्र सरकार राज्यों का हक लेने की कोशिश कर रही है। वकील अजमल खान ने कहा,
15 एंड एंट्री 28 ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज गॉट एक्सक्लूसिव राइट to frame any rule or pass any legislation regulating the market.
बाजार के नियमों का बनाना और बदलने का अधिकार राज्य सरकारों का है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल करने का अधिकार ही नहीं है। उसके अलावा नागरिक जो चाहे वो खा सकता है और इस अधिसूचना में केंद्र सरकार वो भी लेने की कोशिश की है। ये थे अजमल खान के शब्द। लेकिन दूसरी तरफ यह विषय हिंसक हो गया। चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थोड़े छात्र सोमवार को एक बीफ समारोह किया था। इस समारोह में ज्यादातर पेरियार स्टडी सर्कल के समर्थक ने आयोजन किया था। एक पेरियार स्टडी सर्कल के समर्थक सूरज को दूसरे छात्र ने इतना मारा पीटा कि उनको अस्पताल को ले जाना पड़ा। एक छात्र के अनुसार उनकी आंख को गहरी चोट लगी है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
4 देशों की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे चरण में स्पेन पहुंच गए हैं। 30 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री स्पेन पहुंचा है। इससे पहले मोदी अपनी यूरोप यात्रा के पहले पड़ाव में जर्मनी पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान ही जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि यूरोप को अब अमरीका और ब्रिटेन पर निर्भर रहने की बजाय खुद को मजबूत करना चाहिए। ऐसे माहौल के बीच कैसा रहा मोदी का जर्मनी दौरा, ये जानने के लिए मैंने जर्मनी के बॉन शहर में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव से बात की।
मैं कहूंगा कि इस बार काफी सफल रहे हैं। जर्मनी को भी थोड़ा सा एक झटका लगा है अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से। अब तक जर्मनी और यूरोपीय संघ जो है बहुत भरोसा करते थे हर दृष्टि से अमेरिका पर, तो इनको पहली बार लगा है कि अमेरिका पर भी ये पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, तो इनको अब थोड़े से विकल्प चाहिए। चीन एक विकल्प है लेकिन वैसा विकल्प नहीं है जैसा कि भारत हो सकता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन से थोड़ी ही कम उसकी जनसंख्या है, और हो सकता है कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और जर्मनी जो है वो भारत से पीछे रह जाएगा। तो इन सब कारणों से भारत यूरोप के लिए और जर्मनी के लिए भी चीन का और एक थोड़ी मात्रा में अमेरिका का भी विकल्प नजर आता है।
तो जर्मनी की जो चांसलर अमेरिका को लेकर चिंता भी जता रही हैं, मतलब उसको छुपा नहीं रही हैं, क्या ये एक तरह से एक बहुत बड़ा जुआ हो सकता है जर्मनी की चांसलर के लिए?
ये एक बड़ा जुआ है, बिल्कुल है, क्योंकि जर्मनी में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं। पिछले साल तक चांसलर मेर्कल का दोबारा चुना जाना बहुत डावाडोल दिखता था, इस बीच वो एक तरह से आजाद शत्रु जैसी लग रही है कि उनका कोई प्रबल विरोधी ही नहीं है। यूरोपीय संघ में जर्मनी की तूती बोलती है, अंत में लगभग वही बातें होती हैं जो जर्मनी चाहता है। दूसरी ओर जर्मनी ये भी जानता है कि अमेरिका का स्थान लेने लायक इसमें दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेर्कल ने आज ये भी स्पष्ट किया कि भारत या चीन के साथ संबंधों का विकास अमेरिका के साथ पारंपरिक संबंधों की कीमत पर नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से मैं कहूँगा दांव ही खेल रही हैं कि इनका चुनाव भी ठीक रहे, अमेरिका को भी लगे कि हमें संभाल कर अपनी नीति बनानी है, कहीं ऐसा न हो कि यूरोप हमसे दूर हटने लगे, और उसको देखते हुए अमेरिका अपनी नीतियों में शायद पुनर्विचार करे, और दूसरी तरफ जर्मनी का यूरोप पर दबदबा बना रहे।
मोदी जी के लिए क्या ये मुश्किल तो नहीं, लेकिन एक चुनौती वाली स्थिति नहीं है कि वो संतुलन कैसे कायम करेंगे कि यूरोप के साथ भी संबंध अच्छा हो और अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छा हो, जिसके साथ यूरोप थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है?
नहीं, ये प्रश्न तो उनके सामने हर हालत में है। मोदी साहब भी रूस से काफी कुछ हट कर पिछले समयों में अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहे थे, तो अब उनको भी लगेगा कि उनको भी अमेरिका से एक सुरक्षित दूरी और एक सुरक्षित नजदीकी दोनों रखनी होगी। वो भी अमेरिका के विकल्प के रूप में यूरोपीय संघ या जर्मनी को देखते हैं, क्योंकि जर्मनी टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका से पीछे तो लगभग नहीं ही है। तो भारत को भी ये देखना होगा कि वो रूस, जर्मनी या यूरोपीय संघ कहें और अमेरिका, इन सब के साथ एक ऐसा संतुलित रिश्ता रखे कि किसी को उसमें ये न लगे कि उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, और ये भी न हो कि भारत किसी पर निर्भर हो जाए, और ये नटबाजी मोदी जी को अब करनी होगी।
जर्मनी से वरिष्ठ पत्रकार राम यादव। और अब समय है आज के अखबारों पर नजर डालने का, तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ मौजूद है।
जी, जैसा कि अभी हम राम यादव जी से सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में, तो मेरे सामने भी नवभारत टाइम्स है जिसमें लिखा है कि पीटीआई के हवाले से उन्होंने लिखा है कि भारत और जर्मनी ने आतंकवाद को बढ़ावा व समर्थन देने और उसे फंड मुहैया कराने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का इरादा जाहिर किया है। एक खबर और है जो कि कई अखबारों में है, लेकिन मेरे सामने क्योंकि द एशियन एज है उसके बारे में, उसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि एक रुपये का नया नोट जल्दी ही प्रचलन में आने वाला है और इस नोट का रंग मुख्य रूप से गुलाबी और हरे रंग का होगा, और सरकार ये नए नोट प्रिंट कर चुकी है, इसलिए काफी अहम है क्योंकि 1994 के बाद से एक रुपए का नोट बंद हो गया था। जी 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 बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी सी खबर एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसमें लिखा है कि कैंसर के खिलाफ चल रहे युद्ध में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुवाई वाली एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार पाया है कि कैंसर फैलने का कारण क्या होता है और इसे कैसे धीमा किया जा सकता है। ये रिसर्च कैंसर के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। अमर उजाला ने लिखा है कि डेंगू चिकनगुनिया पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार केंद्र को फटकार भी लगाई है और कहा है कि केंद्र के स्वच्छता अभियान की तर्ज पर लोगों को वो जागरूक करें। वहीं एक खबर जो कि पूरे हर न्यूज़पेपर में है कि दिल्ली के एक स्विमिंग पूल में डूबने से सोनीपत के एक ट्रेनी आईएएस की मौत हो गई। ये चाहे आप हिंदी अखबार उठाएं चाहे अंग्रेजी अखबार उठाएं, क्योंकि इन्हें तैरना आता था, तो इस मौत पे कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं।
क्या दिल्ली में आईएएस अफसर हैं जो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल में डूबकर मारे गए प्रशिक्षण के दौरान? हाँ, ये हर अखबार में दिखाई दे रही है खबर।
और जनसत्ता मेरे हाथ में है और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों में तैनात डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने लिखा है कि सीबीआई ने सीबीएसई में आईटी विभाग के निदेशक, एक कंपनी के प्रतिनिधि, एक फर्म तथा अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नेट की परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती थी।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिश्री श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में हाल में ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा हुई। इसमें दोनों तरफ के एक एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। कई घरों को आग लगा दी गई। क्षेत्र में अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने सहारनपुर के शब्बीरपुर गाँव का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि ये पूरा मामला क्या है।
बहुत बुरा लग रहा जी, बहुत छोटे छोटे बच्चे सांझ के टाइम रोज पूछे मम्मी पापा मजदूरी पता क्यों नहीं आए, पुल पर मजदूरी करे करते तड़की चले जाते टिपल लेकर।
ये हैं सुनीता, इनके पति सुमित की हत्या सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 5 मई को दलित और ठाकरों के बीच झड़प में हुई थी। सुनीता बता रही हैं कि उनके दो छोटे बच्चे रोज उनसे पूछते हैं कि पापा मजदूरी करके कब घर लौटेंगे। सुमित रसूलपुर के एक ठाकुर परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और वो मजदूरी किया करते थे। उनके चचेरे भाई भैरव कहते हैं,
मेन तो वही था घर में, बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी उसी पे ही थी, छोटा छोटी जिम्मेदारी होंगी, बड़ा का तो बड़ी जिम्मेदारी होगी घर की सारी।
सुमित शब्बीरपुर अपनी मासी से मिलने गए थे। उनकी हत्या का इल्जाम दलितों पर आया है। कुछ दलित इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसी गाँव की मधु दलितों पर हिंसा का इल्जाम लगाती है।
जी, वो उसकी महाराणा ने प्रताप की टीजे काट देते बच्चे, तो चमार का था वो प्रधान, उन्हें नकाटन नहीं दिया तो मैं बच्चे उल्टे लेके चले गए, दरोगा उनके साथ में था तो उस पे पत्थर वार करा चमारियों ने।
अभी जख्म ताजा ही था कि 23 मई को दलितों और ठाकुरों के बीच एक और झड़प हुई। 19 वर्षीय आशीष की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। मई के महीने में शब्बीरपुर गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच 3 बार झड़पें हुई हैं। दलितों के कई घर जला दिए गए हैं, इनमें से एक शिवराज का घर था।
विश्वास यह है इस हालत में चलता है जाना ही पड़ेगा यहाँ से, या धर्म छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए तो ये हो रहा है, हिंदू काटते हैं चमार समझ गए और मुसलमान काटते हैं हिंदू समझ गए, तो हम तो कटते कटते हैं।
शिवराज कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर अत्याचार का सिलसिला जारी रहा तो वो अपना गाँव भी छोड़ सकते हैं और अपना मजहब भी। आखिर दलितों और ठाकुरों के बीच झड़पों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, क्योंकि ये तो सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे थे। दरअसल हुआ ये कि 5 मई को शब्बीरपुर के पास शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था। इस आयोजन में शामिल होने के लिए शब्बीरपुर गांव से कुछ ठाकुर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ठाकुरों का आरोप है कि दलितों ने इसे रोक दिया और पुलिस बुला ली। विवाद की शुरुआत इसी घटना से हुई, लेकिन क्या हिंसा का कारण कुछ और भी था? शिवराज दलित की हैसियत से जीवन जीते जीते अब थक चुके हैं, अपने खिलाफ भेदभाव से वो उब चुके हैं। दलित पार्टियों और नेताओं के जरिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होकर परेशान हो चुके हैं, जैसा कि एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र ने हमें बताया।
आज हम लोगों को जो जरूरत पड़ी समाज में काम करने की, हमारे नेताओं की कमी है। हमारे नेता सिर्फ चुनाव में 5 साल बाद एक बार दिखाई देते हैं और 5 साल जीतने के बाद या हारने के बाद वो कभी भी हमारे दुख सुख में हमारा साथ नहीं देते, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का या कोई भी नेता हो। आज नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाना बंद किया है, इसीलिए हम लोगों ने सामाजिक संगठन बना के इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है।
नतीजा भीम आर्मी जैसे दलित संगठनों का जन्म। आलोक लोहानी भीम आर्मी के एक स्थानीय नेता है, वो कहते हैं उनके खिलाफ भेदभाव आज भी जारी है।
जो आसपास के गांव में होते हैं पानी पुनी नहीं पिलाने देते हैं और कहते हैं भाई चमार है इसको अलग बढ़ा दो, इसको बर्तन भांडे लगाओ, इसको खाने यहाँ से मत करो। अगर मजदूर जब ये देखो मान लो जब ये लोग ऐसे सोचते हैं तो मजदूरी कौन करते हैं उनके पास में? हम चमार लोग तो करते हैं ना, हमारी जो हम लोग बनाते हैं मकान वो चमार के हाथों से बनते हैं, वो लोग उनमें रहते हैं। जब मान लो इतनी घिन ना करते हैं तो वो लोग फिर उनको मजदूर पे क्यों मिलाते हैं, उन पर काम क्यों करवाते हैं लोग?
भीम आर्मी की स्थापना 2 साल पहले की गई थी। इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद।
लोग जो हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं, वो जिस तरह की बातें उनको समझाती उसी व्यवस्था में आरएसएस और संघ के लोग जो हैं वो छोटे से बच्चे का माइंड कैप्चर करते हैं, उसको शाखाओं में बुलाते हैं, वो जो चीज़ें उन्हें समझाते हैं वो चीज़ें समझ आते हैं। भीम आर्मी इसी पे काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि भीम आर्मी शब्बीरपुर में हुई हिंसा में पूरी तरह से शामिल है। लोहानी जैसे भीम आर्मी के कई सदस्य गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर रहे हैं। पुलिस को चंद्रशेखर की भी तलाश है। राघव लखनपाल शर्मा सहारनपुर से बीजेपी के सांसद हैं। उनका कहना है कि सामाजिक समस्याएं अपनी जगह पर हैं, मई में हुई हिंसा उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक साजिश है।
एक षड्यंत्र के तहत इसको जातिगत हिंसा का रूप देने का प्रयास किया गया। अब वो जिन संगठनों के नाम आ रहे हैं और उसमें एक आध संगठन राजनीतिक संगठन भी है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि उनकी खोई हुई जमीन उनको वापस लानी है और कैसे उसको लाया जाए। तो हो सकता है कि उनका संरक्षण किसी अन्य संगठन को दिया गया हो कि वो सिचुएशन को खराब करे, एग्रेवेट करे और वहाँ ऐसा वातावरण पैदा करे कि वो जातिगत हिंसा का रूप ले ले। तो मुझे तो लगता है ये प्रदेश सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश का बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है।
हिंसा दोबारा न भड़के इसके लिए सरकार ने पुलिस की भारी संख्या शहर में तैनात कर दी है। दोनों समुदायों के बीच बातचीत के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। ठाकरों के पास जमीनें हैं, दलित उन जमीनों पर मजदूरी करते हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इन दोनों का एक दूसरे के मोहल्लों और घरों पर आना जाना बंद है। जुबैर अहमद, BBC, शब्बीरपुर, सहारनपुर।
और अब कश्मीर पर BBC की विशेष श्रृंखला। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सुमायरा की शादी सरहद पार वहां गए भारत प्रशासित कश्मीर के एक चरमपंथी से हुई। साल 2011 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक सरेंडर स्कीम लाई जिसके तहत ऐसे चरमपंथियों को वापस भारत लौटने का मौका दिया गया। जब पति ने वापस भारत आने का फैसला किया तो वो भी साथ आ गई, पर सैकड़ों और सरेंडर्ड चरमपंथियों की तरह ही किसी तरह ये लोग गैर कानूनी रास्तों से लौटे और इस स्कीम का फायदा ही नहीं उठा पा सके। 2 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई और अब सुमायरा यहां फंस गई हैं। सुने उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
हम लोगों ने बहुत गलती की है, ये शादी की है कश्मीरियों के साथ। मेरी शादी है पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में, 2002 में मेरी शादी। अब्दुल्ला यहाँ का कश्मीरी था, यहाँ से बहुत सारे लड़के गए थे तो उनके साथ ये भी चले गए। यहाँ कुछ ये कश्मीर के लिए गए थे, ये आज़ादी मांगते मांगते ये भी पाकिस्तान पहुँच गए, मुजफ्फराबाद में रह रहे थे। वही सोचा कि ये कश्मीरी है, मतलब अपने मुल्क का है, मतलब कश्मीर और मुजफ्फराबाद जो है ये एक ही मुल्क है। हम लोगों ने शादी कर ली इसीलिए। यहाँ की गवर्नमेंट ने हम लोगों को बुलाया, ये लोग आ गए, तकरीबन 450 फैमिली आई हुई है। तो हम लोग आ गए, उन्होंने उस टाइम हम लोगों से वादे किए कि आप लोगों को वहाँ जगह दी जाएगी, मकान दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, सहूलत दी जाएगी। मतलब ये यहाँ कुछ हम लोगों को नहीं मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। इस जगह ज़िंदगी क्या है, इस जगह कुछ ज़िंदगी नहीं। अपने पति के पीछे हम आ गए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, अपना मुल्क छोड़ दिया। हम लोग यहाँ आके बिल्कुल फंस गए, कैसे नहीं फंसे, फंस गए। आने जाने के लिए कुछ रास्ता मिल जाए फिर आए जाएंगे, ज़ाहिर है अपने माँ बाप से मिलेंगे, बहन भाइयों से मिलेंगे, फिर बेहतर हो जाए। हमें 5 साल हो गए, इस टाइम तक कोई इजाज़त वगैरह मिली नहीं जाने की। अकेले में बैठते हैं हम लोग का बहुत टेंशन है, हमें बिल्कुल अंदर से उन्होंने ख़त्म कर दिया, हम लोग खोखले अंदर से ख़त्म हो गए। अब तो क्या ज़िंदगी पति के बगैर, मतलब उसकी बीवी की क्या ज़िंदगी होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्या ज़िंदगी। 5 बच्चे मेरे, और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हम लोगों ने वो ज़मीन वगैरह का काम नहीं किया, इस जगह आके हमने ज़मीन के काम भी किए, सब कुछ किया। यहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये लोग जो हैं, हम इनके खून के नहीं है, कोई रिश्ता हमारा है नहीं इनके साथ। ठीक है, इनका बेटे के साथ रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। अब अल्लाह जाने हम लोग सोचते हैं हम लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो इतने दूर हैं, वो क्या कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहते। ज़ाहिर है अपनी जगह वो भी पछताते होंगे, हमने उस टाइम गलत फ़ैसले किए, बेटियों के साथ बेटियाँ अपनी निकाल दी दूसरे मुल्क पे, अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो नहीं देख रहे।
और अब मुख्य समाचार।
BBC समाचार। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया है कि 2 साल के गृह युद्ध के बाद यमन पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत पतन की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी सेना का कहना है कि अमेरिका को निशाना बनाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का उन्होंने सफल परीक्षण किया है। BBC समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। दिन भर में फिलहाल अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।